जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में सतत केवल ज्ञान पाने, सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर ने पिछले दिनों अपने जीवन को अच्छा बनाने की बहुत सारी बातों पर विचार किया। अपन अपने जीवन को गौर से देखें तो जीवन सबका व्यतीत होता जाता है। कोई ज्ञानवान हो या अज्ञानी हो, कोई धनवान हो या कि गरीब हो, छोटा हो या कि बड़ा हो, उम्र में भी बहुत छोटा या बड़ा हो, किसी भी स्थिति में हो, जीवन सबका व्यतीत होता। उस जीवन के व्यतीत होने में अगर अपन देखें तो ज्यादा सिमिलरिटी है, डिसिमिलरिटी कम है। सब एक जैसा ही जीवन चल रहा है, सब सांस लेते हैं, सबको भोजन पानी की आवश्यकता है। ये बात अलग है कि कोई किसी प्रकार से भोजन करता है, कोई किसी प्रकार से पानी पीता है, पर पानी तो सब पीते हैं, भोजन सब करते हैं। अच्छा, ये सब चीजें भी हैं, इनमें थोड़ा बहुत फर्क भी हो सकता है, लेकिन जन्म लेने की प्रक्रिया, मरण की प्रक्रिया और बुढ़ापा आने की प्रक्रिया, वो तो सबके जीवन में, सबका जन्म हुआ है। जन्म आपका घर में हुआ हो सकता है, किसी बड़ी हवेली में हो सकता है, या कि किसी छोटे से घर में हो सकता है, कि घास फूस की झोपड़ी में हो सकता है, पर जन्म तो हुआ है। ठीक इसी तरह से मरण भी एक दिन निश्चित है, बीच के समय में, और हम अपने उम्र के विभिन्न पड़ाव से गुजरेंगे, उसमें बुढ़ापे से भी गुजरेंगे। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सबके लिए समान है, और ऐसा नहीं है कि ये हम नहीं समझते हैं, इस बात को हम अच्छे से समझते हैं। हमारे जीवन में जन्म मरण के बीच की स्थिति में सुख दुख आते हैं, उन सुखों को कैसे सहन करना और दुखों को कैसे झेलना, सुख को भी सहन करना कह रहा हूं। सुख सहन नहीं कर पाते हैं तो धर्म से विमुख हो जाते हैं, हां, क्योंकि सुख में इतने गाफिल हो जाते हैं हम कि फिर अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। ये तो कहलाता कि सुख को सहन नहीं कर पाए। सुख को सहन करना भी आसान चीज नहीं है, दुख को झेलना तो आसान है ही नहीं। इन दोनों स्थितियों में और ये विचार करना, कोई अगर सावधान होकर के सुख दुख को भोगता है और कोई असावधानी पूर्वक अपने सुख दुख को भोगता है, बस इतना अंतर जरूर हमें देखने में आता है। बाकी सब चीजों में बहुत समानता है, पर ये असमानता दिखाई देने वाली स्पष्ट है। सुख दुख के खेल में कोई उसे सावधानी से खेलता है, कोई उसे असावधान होकर के सुख दुख के खेल में और उलझ जाता है। जो सावधानी से उस खेल में गुजरता है वो तो उसमें जीत करके उससे बाहर हो जाता है। एक घटना पढ़ रहा था मैं, कहीं पर पढ़ी थी, एक थोड़ा अल्पज्ञानी था, पर लोग उसको पागल समझते थे। वो नदी के किनारे बैठा रहता और सामने एक कपड़ा बिछाया था उसने, उस पर लोग जो भी डाल देते थे तो उसमें से वो पैसे पैसे ले लेता था, बाकी कुछ नहीं उठाता था। लोग कई बार जो है उसके इस पागलपन का मजा लेते थे कि देखें। अच्छा, और एक रुपए का सिक्का डाल देंगे तब भी नहीं लेता था, 10 पैसे 5 पैसे चवन्नी ज्यादा से ज्यादा 8 आने बस रुपए। कागज का 100 रुपए का नोट भी लोगों ने डाल के देखा कि शायद थोड़ा बहुत बुद्धिमान होगा, लेकिन उसको तो इतनी बुद्धि थी कि वो बस जो पैसे पैसे थे वो लेता था, बाकी सब छोड़ देता था। तो लोग मजा लेते थे, कई लोग तो यही मजा लेने उस पागल के पास आया करते थे कि देखें। एक व्यक्ति ने एक दिन जब कोई नहीं था आसपास तो उससे पूछा कि मैं तुम्हें यहां 20 वर्ष से तो देख रहा हूं, क्या तुम्हें इतने वर्षों में भी थोड़ी बुद्धि नहीं आई? क्या सचमुच तुम इतने बुद्धू हो, इतने पागल हो? 100-100 का लोग तुम्हारे सामने लोग डाल देते हैं और तुम उसके बावजूद भी उसकी तरफ देखते नहीं, वो 10 पैसे 5 पैसे चवन्नी यही उठाते हो। अरे 20 साल भी अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगाएगा तो इतना तो समझ लेगा कि एक बार उठा लिया 100 रुपये मामला खत्म, क्या 5-5 10-10 पैसे। तो उसने कहा कि सुनो, मैं इतना बुद्धू नहीं हूं, मैं समझता हूं, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि जिस दिन रुपए उठाना शुरू कर दूंगा उस दिन ये खेल खत्म हो जाएगा। उस दिन फिर कोई मेरे पास में 5 पैसे 10 पैसे भी नहीं डालेगा, मैंने रुपए कभी नहीं उठाए और कभी उठाऊंगा भी नहीं, पर मैंने 5 पैसे 10 पैसे उठा उठा कर हजारों रुपए उठा लिए। पर रुपए कभी नहीं उठाया ना मैं उठाऊंगा, जिस दिन उठा लूंगा रुपए उस दिन ये खेल खत्म हो जाएगा, फिर लोग मुझे पागल नहीं समझेंगे, अभी ये चलने दो खेल कि मैं पागल हूं। हम लोग के साथ भी ऐसे ही तो नहीं है, मैं तो इस घटना को पढ़ करके इसी सोच में पड़ गया कि शायद अपन भी इस सुख दुख के खेल को, इस हर्ष विषाद के खेल को ऐसे ही प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, ऐसे ही बढ़ा रहे हैं कि चलने दीजिए, जिस दिन भी हम सुख को सहन करना सीख लेंगे, सुख से और दुख से हम पार हो जाएंगे, जिस दिन भी हम दुख में विषाद करना और सुख में हर्षित होना ये छोड़ देंगे, इस खेल से हम उस दिन बाहर हो जाएंगे, हमारा जीवन उस दिन कुछ और ही होगा। इसी का नाम आध्यात्मिक और आत्मिक विकास है। मेरी भावना की आखिरी लाइन क्या लिखी, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट साग। इतने में पूरा अध्यात्म आ गया, पूरा समय सारजी आ गया, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट साग। सुख आने का भी संकट है और दुख आ जाए तो भी वो संकट है, दोनों ही संकट है भैया। ऐसा नहीं समझना कि दुख आना ही संकट है, सुख भी संकट है, क्योंकि वो सुख मुझे धर्म से विमुख करने वाला संकट है। और अध्यात्म या कि आत्मिक विकास इतना ही है कि हम इन दोनों स्थितियों में अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन करते रहें तो हम इस संसार से पार हो सकते हैं। और जो ऐसा निर्णय कर लेता है वही फिर अपने जीवन में व्रत नियम को अंगीकार करना शुरू कर देता है, अपने जीवन को अनुशासित और मर्यादित करना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं व्रती होना। निरतिचार रूप से व्रत पंचक मपि सील सप्तकम चापि, निरतिक्रमण मम व्रत, व्रत पंचक मपि सील सप्तकम चापि धारयते निस्सल्यो योऽसौ मति व्रतिनां मतो व्रतिकः। व्रती जनों ने उसे ही व्रती कहा है जो निश्चल होकर के अपने जीवन को 5 अनुव्रत और 7 सील व्रतों से अनुशासित और मर्यादित कर देता है, उसका अप्रोच क्या है? उसका अप्रोच है कि वो अपने आत्मा का विकास करे। घर में रह करके भी कोई इस तरह से व्रती हो सकता है। इसी का नाम दूसरी प्रतिमा है, दूसरी सीढ़ी है, दूसरा कदम है जीवन में आध्यात्मिक विकास का। कल हमने अपने आध्यात्मिक विकास के लिए गृहस्थ में रह करके भी पहला कदम क्या हो सकता है, इस पर विचार किया था कि भाई हम ऐसी चीजों से बचें जो कि खाने पीने करने की नहीं है, अभक्ष है। खाने पीने में तो अभक्ष का अपन ध्यान रखते हैं, करने में भी अभक्ष का ध्यान रखना चाहिए, पहनने ओढ़ने में भी अभक्ष का ध्यान रखना चाहिए। वे सब चीजें नहीं करनी चाहिए, वे सब चीजें अभक्ष कहना चाहिए, नहीं करने योग्य है, जिनमें हिंसा होती है, जिनके लिए झूठ बोलना पड़ता, चोरी करना पड़ती है, मन खराब करना पड़ता है और मूर्छा हमारे भीतर आ जाती है। इन पांच पापों से युक्त चाहे वो खान पान हो, चाहे पहनने ओढ़ने की चीज हो, चाहे वो और कोई सांसारिक कार्य हो, इन सब से बचना चाहिए। पूर्वजों की कीर्ति बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, रोज देव दर्शन करना चाहिए। और पांच कर्तव्यों में से और क्या क्या थे याद है? अपने बंधु बांधवों की सहायता करनी चाहिए, अपनी आत्मोन्नति और महाव्रत धारण करने का विचार रखना चाहिए। ये यहां से अपने आत्मिक विकास की पहली सीढ़ी शुरू होती है। उसी में आचार्य भगवंत आज दूसरी सीढ़ी चढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि निरतिक्रमण मनोव्रत प्रतपंचकम सील सप्तकम चापि। मैं अपने जीवन में सावधानी रखूंगा, संकल्प पूर्वक इरादा करके किसी के जीवन को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, मैं अपना जीवन ऐसा जीऊंगा। मेरे जीवन जीने में भोजन इत्यादि में थोड़ी बहुत हिंसा हो जाएगी, हो सकती है। मैं अपना जो व्यापार करूंगा उसमें थोड़ी बहुत हिंसा हो सकती है। अपनी आत्मरक्षा के लिए मुझे हो सकता है कि अस्त्र शस्त्र धारण करना पड़े, वो विरोधी हिंसा भी हो सकती, लेकिन मैं बिना प्रयोजन और संकल्प पूर्वक कि मैं इसे मानूंगा, इस तरह नहीं करूंगा, इतना ये पहला व्रत हो। मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा जिससे कि दूसरे का मरण हो जाए, कठोर निंदनीय असभ्य वचन नहीं बोलूंगा, इतना तो अपने आत्म विकास के लिए अपन धारण कर सकते हैं। मैं दूसरे को संक्लेश पहुंचाने के लिए उसकी किसी भी वस्तु को उससे बिना पूछे नहीं ग्रहण करूंगा, क्योंकि मैं बिना पूछे ग्रहण करूंगा तो उससे संक्लेश होगा, मैं उससे संक्लेश नहीं कराऊंगा, उससे पूछ करके ले लूंगा, अगर देगा तो ले लूंगा, नहीं देगा तो मैं अपनी इच्छाओं को रोक लूंगा कि नहीं चाहिए, आप नहीं देते तो मुझे नहीं चाहिए। और मैं सबके प्रति सद्भाव रखूंगा, खोटी दृष्टि नहीं रखूंगा, मैं अपने संबंधों में पवित्रता बनाए रखूंगा। क्या इस तरह चौथा व्रत नहीं ले सकते हैं? और मैं अपने पास अपनी आवश्यकता की चीजें रखूंगा, जो आवश्यकता से जब ज्यादा हो जाएंगी तो दूसरे के काम आएंगी तो मैं उसे दे दूंगा। इस तरह परिग्रह का परिमाण क्या अपने जीवन में इस तरह हम आसानी से पांच व्रतों को नहीं धारण कर सकते हैं? ये कठिन मालूम पड़ते हैं, पर अभ्यास करें तो बहुत आसान है। और इतने ही नहीं, अब मुझे ज्यादा अपने जीवन को लापरवाही से नहीं जीना है, सुख दुख के अवसर पर मुझे सावधानी रखनी, हर्ष विषाद नहीं करना है, तो मैं अपनी सीमाएं कर लूं, मेरे आवागमन की सीमा निर्धारित कर लूं, कितनी दौड़ होगी मेरी, कहां तक दौड़ूंगा, पांच इंद्रिय और मन के विषयों की पूर्ति के लिए सब दिशाओं में कहां तक दौड़ूंगा। एक निश्चित तो होना चाहिए कि मैं दौड़ते रहूंगा पूरे जीवन, तो ये अंतिम दौड़ है फिर, इसमें तो मुझे कभी भी संतोष नहीं रहेगा। पंचेंद्रिय और मन के विषय तो अंतहीन है, और मेरी दौड़ भी इनके पाने के लिए, इनकी पूर्ति के लिए क्या अंतहीन ही होगी? नहीं, मैं मर्यादित कर लेता हूं, मैं अपने देश से बाहर किसी भी व्यापार व्यवसाय के लिए नहीं जाऊंगा, मेरे अपने देश में मेरा जो उद्योग है मैं उतना ही करूंगा। इस तरह क्या हम अपने जीवन में सीमाओं का निर्धारण नहीं कर सकते, अपने स्थान का निर्धारण नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जो अप्रयोजनीय पाप है उससे तो हम बच ही सकते हैं, निष्प्रयोजन पाप है, बैठे बैठे दूसरे के बारे में हानि लाभ का विचार क्यों करें, व्यर्थ में दूसरे को हिंसा की चीजें क्यों दें, व्यर्थ में जो है और बिजली नल इत्यादि का दुरुपयोग क्यों करें, प्रमादचर्या हिंसा दान अपध्यान दुश्रुति, व्यर्थ में दूसरे की निंदा की बातें क्यों सुने, दूसरे के दोष क्यों देखें। जरा बापू के तीन बंदर को याद कर लिया करें, मुंह पर हाथ रखा है, कान पर भी हाथ रखा, आंखों पर भी हाथ रखा, न बुरा देखूंगा न बोलूंगा न सुनूंगा। ये इसी को आचार्य भगवान शायद वहीं से लिया गया, ये बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ये अनर्थ दंड कहलाता है, निष्प्रयोजन पाप है जिसमें हमारा कुछ भी जीवन का कल्याण नहीं होता। ऐसे अनर्थ दंड से विरक्त हो जाना, ये हो गए दिग्व्रत देशव्रत अनर्थ दंड व्रत, तीन गुण व्रत हो गए। और क्या बचा, समय का सदुपयोग करूंगा, हमने हर्ष विषाद से बचने के लिए अब सुबह शाम बैठा करूंगा, पंच परमेष्ठी का स्मरण करूंगा, थोड़ा थोड़ा समय एक घड़ी दो घड़ी, ये हो गया समय, समय का सदुपयोग करना है हर्ष विषाद से बचने के लिए, घड़ी दो घड़ी सुबह शाम बैठा करूंगा, पंच परमेष्ठी का ध्यान करूंगा। बहुत कठिन नहीं है, अपन ने बना लिया है। अगर थोड़ा सा विचार कर ले, अगर एक बार अपने मन में यह सोच आ जावे कि मुझे अपने जीवन को मर्यादित कर लेना है, तो फिर ये सारी मर्यादाएं अपने आप, अभी तो अपन को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इन मर्यादाओं का, लेकिन जिसके मन में विचार आ जाए उसके लिए ये मर्यादाएं अपने आप बन जाती हैं, कहना नहीं पड़ता फिर कि अपने आप ही हमने बना लिया, अपने जीवन को ऐसा करेंगे। और फिर बहुत सारी चीजें हैं पहनने ओढ़ने खाने पीने की, क्या सबको पहनते ओढ़ते खाते पीते रहेंगे, नहीं, कोई सीमा कर लेते हैं भोग भोग की, कुछ चीजें थोड़े समय को छोड़ देते हैं, कुछ चीजें जीवन भर के लिए छोड़ देते हैं, ये भोग भोग का परिमाण हो गया। अष्टमी चतुर्दशी आती है, कुछ तो कर लेना चाहिए, नहीं तो सब दिन समान हो गए, सब दिन ऐसे गुजर जाएंगे, नहीं ये तो मेरे लिए अष्टमी चतुर्दशी विशेष दिन है, कुछ तो करूंगा, थाली में 10 चीजें आएंगी तो एक छोड़ दूंगा, 9 ले लूंगा, मेरा कुछ ज्यादा घाटा नहीं है, पर छोड़ा मैंने, त्याग तो किया ताकि याद रहे कि आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, चलो अष्टमी चतुर्दशी को मैं रात में कुछ भी नहीं खाऊंगा, अकेला पानी भर देख लूंगा, जरूरत पड़ेगी तो, नहीं तो कुछ भी नहीं खाऊंगा। अष्टमी चतुर्दशी को जीवन भर ऐसा कर सकता हूं, इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है। क्या इस तरह हम अपने जीवन को संकल्पित और अनुशासित नहीं कर सकते क्या? बहुत आसान है, ऐसा व्रती बनना ज्यादा कठिन नहीं है। लोगों के नाम तेजी से आना चाहिए थे, लेकिन अभी बहुत धीरे धीरे आ रहे, सोच रहे हैं, फिर लास्ट मोमेंट पे आएंगे, फिर हड़बड़ी में, ऐसे ही होता हमेशा। इस बार भी ऐसे, मैं सोच रहा था कि शायद जल्दी आ जाएंगे, नहीं अभी अभी तो है, 2 तारीख आने में देर है, अभी ले लेंगे ले लेंगे, फिर बाद में कहेंगे कि आपने पहले नहीं बताया, इतना तो हम ही ले लेते, हमारा नाम भी आ जाता। सब कोई कहते हैं ऐसा, बाद में कहते हैं, पहले नहीं कहेंगे। कठिन लगता है ना, असल में हमने बना लिया है कठिन। एक तो हमारी भी कमी है उसमें कि जो लोग व्रत वगैरह का पालन करते ना, वो अपने जीवन को बहुत कठिन सा बना लेते हैं, तो देखने वाले को लगता है कि भैया रहने दो, अपने बस का नहीं, जी नहीं को करने दो, अपने बस का नहीं। इतना आसान था पर हमने उसको कठिन बना लिया, तो दूसरे को भी कठिनाई जैसी लगने लगती है और उसको भी व्रत लेने में थोड़ा सा संकोच होने लगता। अब बताइए इसमें क्या कठिनाई है, मुझे बताइए। 100 चीजों से मेरा काम चल रहा है तो 500 की क्या जरूरत? तो मैंने कोई बहुत बड़ा नियम नहीं लिया, मैंने तो ये कर लिया कि 100 सब्जियों से काम चलता है, 10 लाख प्रकार की वनस्पति का सबका त्याग, 100 रखी बाकी सबका त्याग। अब इसमें कौन सी बड़ी बात हो? आज मुझे 100 में से भी 5 खानी 10 खानी, मैंने 10 का नियम ले लिया रोज के लिए, इसलिए ये हो गया यम और नियम। नियम कहलाता है कुछ समय के लिए, यम कहलाता है पूरे जीवन भर के लिए, तो अष्टमी चतुर्दशी को पूरे जीवन भर के लिए रात्रि भोजन का त्याग, ये यम हो गया। और नियम तो नियम भैया हम अपने हिसाब से रोज रोज ले लिया करेंगे, इसमें डरने की क्या बात है, भोग भोग की सीमा हो गई। अष्टमी चतुर्दशी को व्रत ले लिया, उपवास इत्यादि करना है उपवास कर लिया, और फिर अतिथि संविभाग एक और रह गया, ये 7 शील व्रत हो गए। कठिन है क्या? 12 व्रतों का पालन करते हैं वो व्रती कहलाते हैं, वो दूसरी सीढ़ी चढ़ गए, दूसरी प्रतिमा हो गई। इस तरह से अपने जीवन को अधिक अनुशासित किया जा सकता है, लेकिन अनुशासित वही कर सकता है जिसका थोड़ा सा मोह ढीला हो गया हो। अगर अभी संसार का मोह है, शरीर का मोह है, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि शरीर का मोह जो ना करा ले वो कम है। शरीर के मोह की वजह से तो सारा जोर जान के रखा है, इसी की सुख सुविधा के लिए, आज नहीं कल काम आएगा। बस थोड़ा सा मोह अपन अपना कम कर ले में, और मोह कम करने के लिए व्रत लिए जाते हैं, और व्रत जब लिए जाते हैं जब मोह कम, दोनों एक दूसरे से जुड़ी चीजें हैं। जितना जितना मोह कम होगा उतने उतने व्रत आएंगे, और जितने जितने व्रत आएंगे उतना उतना मोह और घटता चला जाएगा। ये दोनों होना चाहिए एक साथ, और या फिर मोह को घटाने की एक और प्रक्रिया है। किसी ने एक बाबा जी से पूछी थी तो उन्होंने जो बताई वो हम आपको बताए देते। बाबा जी से पूछा कि आप इतना निश्चिंत होकर के इतनी प्रसन्नता पूर्वक और अपना जीवन इतनी थोड़ी सी चीजों में जी लेते, तो उन्होंने कहा कि सुनो, अपने जीवन के बारे में तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर तुम्हारे बारे में एक बात मुझे मालूम पड़ गई। तुम्हारा चेहरा देखते, तुम्हारे चेहरे की लाइनें पढ़ करके तुम्हारा भविष्य मुझे मालूम पड़ गया। 7 दिन बचे हैं, 7 दिन जो करना हो कर लो, अब तो मुश्किल में पड़ा ना कि पूछने तो है कि बाबा जी से कि आप अपना जीवन कैसे जीते हैं, और ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन के कुल 7 दिन बचे हैं। अब चलेगी वापस घर, सबसे बैठ करके बुलाया सबको कि बाबा जी की बात तो झूठी नहीं हो सकती, सच्ची निकल जाएगी, कुल 7 दिन बचे, आज का जोड़ करके अब क्या करना है। तो सबने कहा कि अब क्या करना है, तो कहते भैया जिन जिन से हमारी बुराई है उनको और बुला दो, उनसे क्षमा मांग ले, अब क्या थोड़े दिन का मामला और रह गया। ठीक है भैया, वो भी आ गए, सबसे क्षमा मांग ली, मन में जड़ा जो एक बोझ था वो हट गया, थोड़ी अच्छा लगा उनको, और खाने पीने में ये लाओ और वो लाओ और ये करो। भैया इन 7 दिनों में हमसे अब ये कुछ मत पूछना, जो बना दो वो खा लूंगा, अब क्या करना है, कितने से दिन रह गए हैं, और सामान वामान लाओ, सबके नाम सब लिख दें, ले लो जिसको जो चाहिए हो हमसे, हमारा कुछ नहीं है, इतने दिन की बात और है। अब हिसाब किताब सब तैयार होने लगा, 5-7 दिन तो इसी में निकल गए करने करने में, आखिरी दिन बचा, अब एक दिन और बचा है, तो बस आराम से, और रोज सुबह शाम भगवान का नाम लेना शुरू हो गया। रात में नींद तो कम लगती थी, अब तो और ही कम आती है, और जब नींद जब भी खुल जाती है तो फिर भगवान का नाम गिन रहे हैं दिन, कि अब इतने ही और बचे हैं, क्या करना, अब कोई आसक्ति नहीं है किसी के प्रति, कोई सबको क्षमा कर दिया है, सबसे क्षमा मांग ली है। 7वां दिन भी आ गया, इंतजार कर रहे हैं कि अब मरे, लेकिन नहीं मरे, शाम तक भी नहीं मरे। तो पहुंचे बाबा जी के पास कि आप तो कह रहे थे कि 7 दिन में मर जाएंगे, कहते भैया हमने झूठ नहीं कहा था, जब भी कोई मरेगा 7 ही दिन में मरेगा, सोमवार से लेकर के इतवार तक ही, इन्हें 7 दिन में मरोगे, 7 ही दिन है मरने के, और कोई 8वां दिन नहीं है, ये कहा था हमने। पर मैं तुमसे पूछता हूं कि 7 दिनों में तुमने अपना जीवन कैसे बिताया। उसने कहा ये मत पूछो बाबा जी, बहुत आनंद पूर्वक बीता। बोले बस मेरे जीवन जीने का भी यही स्टाइल है, मैं भी शांति और प्रसन्नता से जीता हूं, अनाशक्त होकर के जीता हूं, सबसे क्षमा भाव धारण करके जीता हूं, अपने जीवन को व्यवस्थित और अनुशासित ढंग से जीता हूं, यही प्रसन्नता पूर्वक और अच्छे से जीने का ढंग है। भाई अब जो जब इस चीज को समझ लेंगे और अपने जीवन में अंगीकार कर लेंगे, तभी से जीवन अच्छा बन सकता है। अपन विभिन्न प्रकार से जीवन को अच्छा बनाने का विचार तो कर रहे हैं, पर कोशिश भी करनी चाहिए कि इसमें से जो बात अपन से बन सके वो अपन जरूर से करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इसी भावना के साथ वो दिया आचार्य विवर विद्यासागर जी
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ स्वरूप तुम्हारा है जग की
विभुवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणा देवेन्द्रचक्रमहिमानममेयमानम् राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्र शिरोचनीयम् धर्मेन्द्रचक्रमधरीकृत सर्वलोकम् लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरुपैति भव्यः अपन ने इस तरह से ये 41 श्लोक धर्म और विशेष रूप से धर्म के पहले सोपान सम्यक दर्शन के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया। सबसे पहले हमने समझा कि जो हमें संसार के दुखों से बचाकर सच्चे मोक्ष के सुख में ले जावे वो धर्म है। वो धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है और इससे जो विपरीत है मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र वो हमारे संसार बढ़ाने वाला है। तब मन में ये प्रश्न ये जिज्ञासा उठती है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यदि यही धर्म है तो सम्यक दर्शन क्या है। तो कहते हैं कि जो सच्चे देवगुरु शास्त्र हैं उनके प्रति जो श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन है। अब मिल गई तो सेहत के अंदर है, खर्च भी नहीं कर सकता, खराब मिल जाए देख लो रोज का काम है। तो वो कपड़ा देख के आए थे, वो डिजाइन देख करके आए थे, एक बार खरीद लेंगे, खरीद लिए, अब खरीद लिया, अब रखे हैं बनवा करके, कब पहनोगे, कोई विशेष अवसर पर पहनेंगे, रखे रहो कोई विशेष अवसर आएगा जिंदगी में, दो चार अवसर आएंगे जब ये पहनेंगे, रख तो नहीं थी बहुत उससे कि हम उपयोग करेंगे, नहीं हो पाता। ये यहां भी यही है, उनको अनुमा इत्यादि विद्या प्राप्त हो जाती पर वो उसका उपयोग नहीं करते हैं। वे तो सम्यक दृष्टि अगर स्वर्ग में जाता है तो अधिक समय उसका धर्म ध्यान में व्यतीत करता है, वहां के भोग विलास में व्यतीत नहीं करता है। सारी सामग्री उसको प्राप्त है लेकिन वो उससे बिल्कुल तटस्थ होकर के, आज कहीं का आयोजन हो रहा है कल कहीं का हो रहा है, ऐसे पिकनिक नहीं जाते वो जाते चलो रे नंदीश्वर द्वीप, चलो अब कृत्रिम जिनालयों के दर्शन करके आएंगे, चलो वहां पर भगवान के समोह शरण में चलो, इंद्र की आज्ञा हो गई तो सबको पूरी पूरे देव सृष्टि को 16 स्वर्ग तक के सब देवों को और उनके साथ में 170 जगह पंचकरण हो सकते हैं पूरे ढाई द्वीप में एक साथ 170 तीर्थंकरों का, किसी को गर्भ कल्याण, किसी को जन्म कल्याण, किसी को दीक्षा हो रही, किसी का ज्ञान हो रहा, किसी को जो है मोक्ष हो गया, चलो सब में जाते हैं देव लोग। अधिकांश जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे श्रद्धा से जाते हैं, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वे कुल देवता मान करके जाना पड़ता, मजबूरी में जाना सबको पड़ता। हाँ ये देवों में जो है निश्चित है, सौधर्म इंद्र की आज्ञा हुई और सब तैयार, 16 स्वर्ग के देव भवनवासी व्यंतर जोशी तो ठीक ही है, 16 स्वर्ग के देव सब तैयार होकर के पूरा प्रोसेशन जाता है भगवान के हर कल्याणक में। तो वहां पर जो श्रद्धालु है वो अपना धर्म ध्यान कर लेता है, जिसकी श्रद्धा नहीं वो तो यहां भी नहीं कर पाता, उसको कहां फुर्सत मिलती। तो कह रहे श्रद्धा का इतना महत्व है कि उसको फिर से और अपनी श्रद्धा को पुष्ट करने के लिए, अब यहां तो अपन ने श्रद्धा ऐसी करी थी कि तीर्थंकर होते हैं, अब लेकिन वहां तो ये फैसिलिटी है कि वहां जब आपको तीर्थंकर को देखना चल विदेश क्षेत्र में, यहां से नहीं जा सकते, वहां देव में तो आराम से, वहां सुनते थे कि तीर्थंकर ऐसे होते ऐसा उनका समोचरण लगता रहता है, चलो देख के आते हैं, बस विक्रिया करी और पहुंच गए समोचरण में, बैठ गए धर्मसभा में जाकर के वहां पर। तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं ऐसा न सोचना, स्वर्ग का अपार वैभव तो मिलता ही है, धर्म ध्यान के ज्यादा निमित्त मिलते हैं। क्योंकि यहां उसने जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा रखी थी, इसलिए उसको वहां पर भी उसमें लिखा है कि जैसे ही उपास सैया पर देव उत्पन्न होते हैं अंतर्मुहूर्त में, उनका जो यौवन अवस्था है वो अंतर्मुहूर्त में पूरी देह बनकर के विद ऑर्नामेंटेशन और बाहर आते हैं उपास सैया से, और सबसे पहले स्नान करके और चलो भगवान जिनेंद्र के वहां जो अकृत्रिम जिनालय है उनमें, फिर बाद में एंटरटेन करते हैं। सबसे पहले तो जन्म लेते ही साथ, और उनके सूतक वूतक नहीं लगती अपने जैसी, क्या मां को सूतक लग गई बेटे को 45 दिन बाद, नहीं वहां तो अंतर्मूल 48 मिनट में पूरा बॉडी फॉर्म हो गई विद ऑर्नामेंटेशन पूरे आभूषण वस्त्र के साथ में, और बाहर आकर के और अपना कार्य शुरू, अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ बना लेते हैं। कई तो वहीं पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, कई लोगों को देवों में ऐसे सम्यक दर्शन होता, कैसे वो देखते हैं कि यहां तो स्वर्ग में तो सौधर्म इंद्र की चलती है, इंद्र इंद्र की आज्ञा में सारे देवी देवता है, और ये सौ सौ इंद्र इन भगवान के चरणों में, आश्चर्य। बस ये देव रिद्धि देख करके, जिनेंद्र भगवान की महिमा देख करके सम्यक दर्शन हो जाते, विश्वास जम जाता है कि अरे वाह, हम तो वहां अपने इंद्र के चरणों में पड़े रहते हैं और यहां पर हमारे खुद ये इंद्र महाराज यहां चरणों में पड़े हुए हैं इनके, ये वास्तव में तो यही श्रेष्ठ है। बस ऐसा मन में आ गया सम्यक दर्शन का निमित्त, तो वहां पर स्वर्गों का सुख पाते हैं ऐसा न लेना, वहां पर जाकर के भी अपने धर्म ध्यान के लिए और विशेष सामग्री उनको प्राप्त हो जाती है। तो कह रहे हैं कि जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है, उनके प्रति श्रद्धा रखता है, उसको ये उपलब्धियां आसानी से हो जाती। और क्या मिलता है, अब स्वर्ग में ले गए, वहां इंद्र बन गए, वहां सब कुछ बढ़िया था, अब वहां से आएंगे तो कहां आएंगे, अब बता रहे हैं कि वहां से आकर के मनुष्य होंगे। नवनिधि सब ये हो गया, पढ़ तो लिया अपन ने, नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा, नौ निधियां और कितना सप्तद्वय, सात दुनी 14, तो क्या हो गए 14 रत्न हो गए, नौ निधियां और 14 रत्न का स्वामी, सर्वभूमिपति चक्रम, और जितनी भी षटखंड पृथ्वी है सर्वभूमिपतिया, छह खंडों का अधिपति अर्थात चक्रवर्ती हो जाता है। वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्ट दृशा क्षत्रमौली शेखर चरणा, स्पष्ट दृशा अर्थात जिसके निर्मल सम्यक दर्शन है वो नौ निधि 14 रत्नों का स्वामी हो जाता है, और चक्रवर्ती, चक्रवर्ती कौन कहलाता है, क्षत्रमौली शेखर चरणा, जहां राजाओं के मुकुट भी जिनके चरणों में झुके रहते हैं ऐसे चक्रवर्ती बने को, 32,000 मुकुट बद्ध राजा जिसकी आज्ञा में रहते हैं वो मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ चक्रवर्ती कहलाता है, उस चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त कर लेते हैं इसी सम्यक दर्शन के द्वारा। जितने चक्रवर्ती हैं वे सब सम्यक दर्शन के द्वारा ही इस पद को प्राप्त करते हैं, बाद में अगर राजकाज करते हुए मरण को प्राप्त हो तो नरक जाते हैं, ये ध्यान रखना, और अगर राजगद्दी छोड़कर के दीक्षा ले लें तो उसी भाव से मोक्ष ले जाते हैं। इस पंचम काल में दो चक्रवर्ती नरक गए, बाकी सब तो मोक्ष गए। तो चक्रवर्ती पना भी जो है वो उसी भाव से भी मोक्ष जाने में कारण बनता है। और अगर उसके बाद एक और स्टेप है कि चक्रवर्ती बन गए, अब तीर्थंकर बनो और फिर बाद में मोक्ष जाओ, तो एक पद और बताएंगे, सब सब वैभव, सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, वहां गए तो इंद्रों इंद्र बन गए, देवों के स्वामी बन गए सम्यक दर्शन के साथ, वहां से आए तो यहां पर मनुष्यों के स्वामी चक्रवर्ती बन गए। अब कह रहे हैं आगे जाकर के कि सम्यक दर्शन के करके महात्म से ही अमरासुर नरपति भी यमधर पति भी नूत पादाम भोजा, पहले तो अमर अमर असुर और नरपति अर्थात देवों के स्वामी हो गए, धर्मेंद्र जो वनवासी वंतर इत्यादि है उनके भी स्वामी हो गए, और चक्रवर्ती नरपति अर्थात चक्रवर्ती मनुष्यों का स्वामी, ये सब हो गए। फिर यमधर पति भीष्ट, यमधर, यम का मतलब ऐसा नहीं लेना कि मृत्यु, वैसे यम का अर्थ मृत्यु भी होती, और यम का यहां पर अर्थ क्या है, जिन्होंने यम अर्थात जीवन पर्यंत के लिए महाव्रत धारण कर लिए वो यमधर पति अर्थात मुनि, मुनि जनों के लिए है ये। तो कह रहे हैं कि मुनियों के स्वामी यमधर पति, यमधर अर्थात महाव्रतों को धारण करने वाले मुनि, और उनके भी पति अर्थात स्वामी वो कौन है, गंधर्व, गणधर समझते, डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ तीर्थंकर, आज सीधे शिष्य हैं वो तीर्थंकर के, एकदम निकटवर्ती प्रमुख शिष्य जो कहलाते हैं वो सब मुनियों के स्वामी होते। तो कह रहे हैं कि उस गणधर पद को भी प्राप्त होते हैं तो सम्यक दर्शन के द्वारा पहले देवों के स्वामी बने, फिर जो और असुर जाति के देव हैं उनके भी स्वामी बने, मनुष्यों के स्वामी, और अब मुनियों के भी स्वामी बन गए। मूत पादाम भोजा, मुनियों के स्वामी बन करके जिनके चरण कमलों की पूजा की जाती है, और सुनिश्चितार्था अर्थात जिन्होंने समस्त तत्वों को पदार्थों को अच्छी तरह से जान लिया है, और लोक शरण्य भ्रष्टचक्र धरा, और आखिरी कौन सी चीज रह गई जो तीनों लोकों के सब पदार्थों को जानने वाले हैं, और लोक शरण्य जिन्हों जिनकी शरण में सब जीव अपना कल्याण करते हैं, ब्रश चक्र धरा, ब्रश मतलब होता धर्म और चक्र मतलब होता समूह, तो धर्म चक्र को धारण करने वाले कौन है, तीर्थंकर। तो कहते फिर तीर्थंकर पद को भी प्राप्त कर लेते हैं। कितनी सारी बातें बताई जा रही, कितना लालच आ रहा होगा ना कि अरे वाह खटाखट सब चीजें मिलती जा रही, उधर स्वर्ग में पहुंची तो हाथों हाथ, तो फिर इधर लौट के आए तो चक्रवर्ती हो गए, और फिर कह रहे हैं कि गणधर हो गए, और फिर बाद में तो तीर्थंकर ही हो गए सीधा सीधा, और अभी नहीं रुक रहे यहीं पर संसार में ही ये सब लोग। अब आखिरी में कह रहे हैं कि अधिक क्या कहें, सम्यक दर्शन की महिमा अधिक क्या कहें, जो सम्यक दृष्टि हैं वे अजर वृद्धावस्था से रहित हो जाते हैं, ऐसी अवस्था को प्राप्त होते हैं जहां फिर वृद्धावस्था नहीं आती, अरुज रोग से रहित अवस्था, अक्षय जहां क्षय नहीं होता, फिर अव्याबाध अर्थात जहां कोई बाधाएं नहीं है, विशोक भय संकम, शोक भय और संकम सबसे रहित, काष्ठागत सुख विद्या अर्थात सर्वोत्त पराकाष्ठा जिसको बोलते ना, अत्यंत सर्वोष्ट सुख और ज्ञान भैरव से सहित, और विमलम अर्थात द्रव कर्म और भाव कर्म से रहित शिवम मोक्षम भजंती, मोक्ष को भी वे प्राप्त कर लेते हैं। लास्ट में जाकर के क्या कितनी ऊंचाई बता दी कि सीधा सीधा इन सब विशेषताओं को धारण करते हुए अंत में और मुक्ति भी पाता है कोई, तो वो इसी श्रद्धा से ही पाता है, और कोई संसार में उपाय नहीं है जो कि हमें इन सब चीजों से मुक्त करके और मोक्ष का सुख दे सके। इस तरह सम्यक दर्शन की महिमा, एक पद और बाकी रहा सम्यक दर्शन की महिमा में, जो इसी का ब्रीफ है, संक्षिप्त है, कि जिन भक्ति भव्य, जिनेन्द्र भगवान का जो भक्त है भव्य है, वो क्या क्या प्राप्त करता है, देवेंद्र चक्रम अहिमानम अमीयमानम, अमीयमान मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, अमीय अपरिमित प्रतिष्ठा या मान सम्मान से युक्त या कि ज्ञान से युक्त, देवेंद्र चक्रम अहिमानम इंद्र समूह की महिमा को प्राप्त होता है सबसे पहले, है ना, यही तो बताया था, इसी को संक्षिप्त कर रहे हैं ये लास्ट में, कि सबसे पहले अपरिमित प्रतिष्ठा या ज्ञान से युक्त देवों के स्वामी इंद्र पद को प्राप्त करता, फिर अग्निन्द्र सुरोचनीयम राजेंद्र चक्रम, पहले देवेंद्र चक्र अर्थात स्वर्ग के देवों के समूह को जिसने उसका स्वामी बना प्राप्त कर लिया, फिर कह रहे राजेंद्र चक्र, राजेंद्र चक्र अर्थात चक्रवर्ती पना, अवनींद्र सुरोच नियम अर्थात मुकुटवद राजाओं के द्वारा पूजनीय ऐसे चक्रवर्ती के चक्र रत्न को प्राप्त कर लेता है, फिर कहते अधरीकृत सर्वलोकम धर्मेंद्र चक्रम, जिसके चरणों में तीनों लोक आकर के और प्रणाम करते हैं, ऐसे धर्म चक्र को धारण करने वाले तीर्थंकर पद को प्राप्त करके शिवम उपैति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से सम्यक दर्शन की महिमा है, अपने को सच्ची श्रद्धा के साथ और संसार में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, कभी भी अपनी श्रद्धा में कमी ना आए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और ना ही दूसरे की श्रद्धा में कमी में निमित्त बनना चाहिए। अपन कई बार अपने आचरण से दूसरे की श्रद्धा को तोड़ देते हैं, हमारा आचरण दूसरे में श्रद्धा पैदा करने वाला हो, हमारा जीवन दूसरे में विश्वास उत्पन्न करने वाला हो, ऐसा ना हो कि उसकी विश्वास और उसकी श्रद्धा हमारे आचरण हमारे जीवन को देख करके वो और श्रद्धा से विचलित हो जाए। अपनी श्रद्धा को बनाए रखना और जो अपने संपर्क में आए उसके मन में भी श्रद्धा और विश्वास जागृत हो वितरागता के प्रति, ये उपाय करना चाहिए, ये इसका उद्देश्य अपन ने इस तरह से 41 श्लोक पढ़ लिए। इसमें प्रश्न ही ये आ गया कि गणधर भगवान का स्टेटस क्या है, तो हमने पहले ही कह दिया था डायरेक्ट डिसाइपल, अब तीर्थंकराज ये इनका स्टेटस है, सारी मुनियों के स्वामी होते हैं। गणधरा गणति को अर्था चिर प्रवर्जित मुनि के समूह को गण कहते हैं और उस गण के स्वामी को गणधर कहते हैं। बहुत विशेषताएं हैं। गणधर महाराज जो है वो छठे सातवें गुणस्थान में विचरण करने वाले मुनि महाराज हैं। हालांकि गणधर कौन है? छठे सातवें गुणस्थान में विचरण करने वाले मुनि महाराज हैं, लेकिन महानता इतनी है कि एकमात्र केवल ज्ञान को छोड़कर बाकी 63 विद्यां उनको होती हैं दीक्षा लेते ही। 64 विद्यों में से केवल ज्ञान भर कम है, बाकी सारी विद्यां हैं। और जिस क्षण से उनको वो गणधर का पद मिलता है, उस क्षण से केवल ज्ञान होने तक वे निराहार रहते हैं, और जैसे जैसे उनके उपवास बढ़ते चले जाते हैं, जीवन पर्यंत तो उपवास ही रहते हैं। जब से गणधर बनते तब से शेष जीवन, मान लो कि 11-12 वर्ष की उम्र में बन गए और 80-90 साल तक मान लो रहे, तो उतने समय तक उपवासी, और जितना उपवास बढ़ते जाएंगे शरीर की कांति और बल उतना ही बढ़ता चला जाएगा। क्या अपन एक उपवास करें तो दूसरे दिन उठना बैठना मुश्किल, और उनके साथ ये है कि जितना उपवास बढ़ते चले जाएंगे उतनी एनलाइटेड होता जाएगा उनकी चेतना भी और शरीर भी, दोनों ही चीज। ये उनकी अपनी विशेषता है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि उनके पास इतनी सामर्थ होती है कि भगवान की वाणी को डायरेक्ट अपने भीतर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बहुत अच्छे रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि टेप रिकॉर्डर जैसा बोला जाता, जो कहते हैं अपने में उसको रिकॉर्ड कर लेता है। ऐसे भी बहुत बड़े रिकॉर्ड करने वाले ही नहीं, फिर उसको हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की भी उनके क्षमता होती है। और इतने ही नहीं, 48 मिनट के अंतर और पूरी कही हुई बात को द्वादशांक के रूप में कंपाइल करके और ग्रंथ रूप में प्रस्तुत करने की सामर्थ्य उनको होती। इतने ही नहीं, वे चाहें तो 48 मिनट में पूरे द्वादशांक को पाठ करके दूसरे को सुना सकते हैं, इतनी क्षमता। 48 मिनट क्या होता, द्वादशांक समझते? आज जितने ऐसे ग्रंथ हैं 150-200 ग्रंथ हैं मेन स्क्रिप्ट में अपने, वे 200 ग्रंथ तो हो गए एक बूंद पानी और समुद्र हो गया द्वादशांक। आया समझ में? आ तो गया होगा कि कितना बड़ा होता द्वादशांक। उतने पूरे द्वादशांक को 48 मिनट में अपनी बुद्धि के बल पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य उनके भी। कहां से आ जाती है? सिर्फ एक ही कारण है, श्रद्धा, विशुद्धि, भगवान के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा। इंद्रभूति गौतम वेद वेदांग के पाठी थे, किसी से भी नहीं हारे शास्त्रार्थ में, लेकिन एक श्लोक सुनकर के उसका अर्थ उनसे नहीं बना। त्रैपाल्यम द्रव्य षटकम नवपदसहितम जीव षटकाय लेशा पंचान्नी जास्ती काया व्रत समिति चारित्र ज्ञान भेदा, ये वाला इत्येतन मोक्ष मूलम आता ना तत्वार सूत्र के पहले में। ये कारिका बताते हैं कि इंद्र ने बटुक ब्राह्मण का वेद धारण करके और इंद्रभूति गौतम को सुनाई कि इसका अर्थ बता दो। इसका अर्थ तो मुझे नहीं मालूम, बाकी सब मालूम मुझे। तो ठीक है, फिर हमने तो सोचा था आप ही सब जानकार हो, हम चले उनके पास, सुना है कि कोई भगवान महावीर स्वामी है उनके पास जाते। अच्छा, तुम्हारा गुरु है क्या वो? हाँ, वो तो मेरे गुरु हैं, तो मैं भी चलता हूं, इसका अर्थ उन्हीं से पूछूंगा। बस ऐसे करके लेके आए थे वो, और जैसे ही मानस स्तंभ देखा, भगवान की वितरागता का दर्शन हुआ, तो मान उनका विगलित हो गया। अंदर जाकर के पहुंचे तो भगवान के दर्शन करते ही और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों एक साथ और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के भगवान के पहले शिष्य बन गए और गणधर का पद मिल गया। उसके बाद फिर उन्हीं के भाई वायुभूति और अग्निभूति और वायुभूति अपने 500-500 शिष्यों के साथ भी भगवान के दूसरे और तीसरे गंधर्व बन गए। इस तरह से 11 गंधर्व सारे ब्राह्मण थे, 11 के 11 गंधर्व वेद वेदांग के पाठी। लेकिन श्रद्धा की बात है, श्रद्धा हमारे जीवन को ऊंचाई देती है। इस तरह से जो है ये आचार्य हैं क्या? अरे भैया ये आचार्यों के भी आचार्य हैं। ये गणधर का पद बहुत बड़ा पद। समूह शरण में केवली भगवान और अरहंत भगवान में क्या फर्क है? केवली कहो अरहंत कहो, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, ये दोनों एकार्थवाची शब्द हैं। चार घातीय कर्मों के अभाव होने पर जो केवल ज्ञान की प्राप्ति जिसको होती है उनको केवली कहते हैं और वही अरहंत अवस्था कहलाती है। चार घातीय कर्मों से रहित जो अवस्था है वह अरहंत अवस्था है, और चूंकि उनके केवल ज्ञान की प्राप्ति होती इसलिए उनको एक नाम दे दिया कि वे केवली हैं। तो केवली और अरहंत में कोई अंतर नहीं। आप असल में पूछना ये चाह रहे हैं कि तीर्थंकर केवली और अरहंत में क्या अंतर? तीर्थंकर की अपेक्षा केवली और अरहंत में क्या फर्क है? तो देखिएगा, छह तरह के केवली होते हैं। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, मूक केवली, अंतकृत केवली, उपसर्ग केवली और सातिशय केवली। ये छह प्रकार के केवली होते हैं, जिसमें तीर्थंकर केवली तो वे हैं जिनको केवल ज्ञान होने के बाद समूह शरण की रचना होती है, 12 सभाओं में धर्म का उपदेश होता है और जिनके माध्यम से तीर्थ चलता है। वे भी केवल ज्ञान से युक्त हैं, लेकिन उनकी अपनी विशेषता यह है तीर्थंकर केवली की। मूक केवली वे कहलाते हैं जिनको केवल ज्ञान होने के बाद फिर बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी और उनका मोक्ष हो गया, बिना बोले ही उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली और उनका मोक्ष हो गया, वे मूक केवली अर्थात बोले ही। फिर सामान्य केवली जिनको कि चार घातीय कर्मों के नाश होने पर केवल ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है लेकिन जिनके लिए कोई समुशरण इत्यादि नहीं लगता है वे सामान्य केवली कहलाते हैं, उनको अरंत केवली भी कह सकते हैं। और फिर होते हैं सातिशय केवली जिनके केवल ज्ञान के बाद समुशरण तो नहीं लगता लेकिन गंध कुटी की रचना होती है, जैसे अपन ये वो बना लेते हैं ना पांडुकशिला जैसे, उसी तरह से तीन वेदिकाओं वाली और उसके ऊपर सिंहासन और फिर कमल, उस पर वे जाकर के विराजमान होते हैं, वे सातिशय केवली कहलाते हैं। और फिर अंतकृत केवली वे कहलाते हैं जिनको कि उपसर्ग हुआ जिनके ऊपर और उपसर्ग के बीच में और उनको मोक्ष हो गया, केवल ज्ञान और मुक्ति दोनों एक साथ, वे अंतकृत केवली कहलाते हैं। और उपसर्ग केवली वे कहलाते हैं जिनको उपसर्ग होने पर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, वे उपसर्ग केवली कहलाते हैं। इस तरह से ये केवली सब हैं लेकिन उनकी वैरायटी है, अलग अलग उनके अपने स्टेटस हैं। और शुद्ध केवली बिल्कुल अलग चीज है, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। केवली तो वो हैं जिनके की घातीय कर्म नष्ट हो गए और शुद्ध केवली वे हैं जो कि मुनि हैं, लेकिन जिनको केवल ज्ञान में जो जो जाना गया है वो सब शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जान दिया जाता है, वो शुद्ध केवली क्या है। केवल ज्ञान के विषय को अपने शुद्ध ज्ञान के द्वारा जो जान लेते हैं संपूर्ण द्वादशांक को, वे शुद्ध केवली कहलाते हैं, वे मुनि हैं छठे सातवें गुण स्थान में। और वो जो केवली है वो तेरहवें गुण स्थान में घातीय कर्मों के नष्ट होने पर। ये दोनों के बीच अंतर समझना चाहिए। सब गणधर भगवान उसी भाव से मोक्ष चले जाते हैं, एक दो भाव से उसी भाव से डेफिनेट गणधर दूसरे भाव का वेट करने का सवाल ही नहीं होता उनके, तो उसी भाव से तेषा विद्यां तो हो ही उनको, एक बाकी है केवल ज्ञान होना है और उनको मुक्ति हो जाती है। इसलिए गणधर भगवान ऐसे ही हैं, विशेषता है उनकी। मंदिर जी यहां तक कि तीर्थ क्षेत्रों पर क्षेत्रपाल और पद्मावती की प्रतिमाएं रहती हैं। यदि उनसे कुछ लाभ या स्वार्थ के बिना सिर्फ इस आशय से कि वो देव पर्याय में है हमारे तीर्थंकर की उपसर्ग से रक्षा की है, क्या उनको श्रद्धा भाव से जय जिनेन्द्र सिर झुका कर करें तो क्या दोष लगेगा? यदि देख करके मुंह फेर लेवें या अनदेखा करें तो उनकी अभिनय हो जाएगी क्या? है ना, आप मेरे को कितना भी हिलाओ डुलाओ, आप कैसे भी पूछो हैं, मेरा जवाब बना बंधाया है। मेरे भगवान का वीतरागी है, जहां निद्रागता है वहां पर मैं 100-100 बार प्रणाम करूंगा, और बाकी जो संसार में है, चाहे वे देव पर्याय में हो, चाहे वे मनुष्य पर्याय में हो, चाहे किसी भी पर्याय में क्यों ना हो, और हम उन सब के प्रति श्रद्धा भाव तो न रख पाएंगे, उन सब के प्रति सम्मान सिर्फ जय जिनेंद्र के रूप में ही हमारा होगा। आप कह रहे हैं कि श्रद्धा, तो श्रद्धा तो भैया ऐसी छोटी मोटी चीज तो है नहीं, ये ऐसा तो है नहीं कि जहां चाहे फोड़ दो, नारियल है ना, नारियल नहीं, रियल नहीं है तो आर्टिफिशियल है क्या, नहीं ये ऐसा है कि ये हर जगह नहीं झुकता, जहां वितरकता है वहां पर झुकेगा, बाकी किसी का असम्मान भी नहीं होगा, असम्मान किसी का नहीं करेंगे, लेकिन सम्मान का अपना क्राइटेरिया है। हम अपने मित्रों से मिलते हैं तो उनसे हेलो कह के मिलते हैं, हम अपने से बड़ों से मिलते हैं तो जय जिनेंद्र या चरण स्पर्श या प्रणाम नमस्कार, ये हमारा शिष्टाचार है। लेकिन जब भगवान हमारे सामने होंगे तो नमोस्तु, वो जो टेक्निकल वर्ड है नमोस्तु, वो पूरी श्रद्धा से भर करके ही किया जाएगा, हर जगह तो नमोस्तु नहीं होगा। आप जय जयेंद्र भी करेंगे तो जय जयेंद्र अपना साधर्मी मान करके करेंगे, जो साधर्मी है, जिनेंद्र भगवान का उपासक है, उसके लिए हम जय जिनेंद्र कहकर के उसका सम्मान करेंगे, इससे ज्यादा और कोई सम्मान अपन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप मेरे से जो पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब तो मैंने दिया नहीं, मुझे जो देना चाहिए जवाब वो मैंने दे दिया, हो सकता है कि आपके प्रश्न का जवाब नहीं भी हुआ हो, आप जानते हैं कि नहीं। मनुष्य पुरुष के शरीर में सम्मूर्षण मनुष्य पैदा होते हैं क्या? हो सकते हैं, पर विशेष रूप से मां लोगों के शरीर में सम्मूर्षण मनुष्य की उत्पत्ति होने के ज्यादा अवसर होते हैं। पुरुष के मलमूत्र इत्यादि में या कि पसीने में भी सम्मूर्षण मनुष्य, सम्मूर्षण मनुष्य समझते हैं, जो कहने को तो मनुष्य है, मनुष्य की देह है उनकी, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ने वाला शरीर है उनका। देखिए इतना सूक्ष्म शरीर के अपन को दिखाई नहीं पड़ रहा है, मनुष्य संगी पंचेंद्री, सोचो आप, सोच सकते हैं? अपनी तो बुद्धि में इतना ज्ञान ही नहीं है कि अपन सोच सकें, बस विश्वास कर सकते कि हाँ ठीक है ऐसा लिखा हुआ। वो सम्मूर्षण मनुष्य संगी पंचेंद्री, मनुष्य की देह का आकार और हमारे लिए विजिबल नहीं है, ऐसी जीव राशि और हमारे शरीर में मलमूत्र में